सारे जीव मोह में उत्पन्न होते हैं, वे इच्छा तथा घृणा के द्वेत से पराजित होते हैं। इस जगत के सारे जीव प्रकृति के चेतनाओं से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी सतोगुणी है। इसी प्रकार देवता प्राय रजोगुणी है तथा देवताओं के से नीचे जीव तथा मनुष्य पशु आदि तमोगुणी या सतरज और तमोगुण के मिश्रण होते हैं। अतः अंशमान बताते हैं कि उनके सारे चाचा जो भस्म हो गए थे प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण, कपिल देव मुनि कुछ समझ नहीं पाए। उसने प्रार्थना की, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बुद्धि से भी परे हैं, अतएव जब तक आप हमें ज्ञान न दें हम आपको समझने में असमर्थ हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेसान गृहित एव ही जानाति तत्त्वं भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, जिस पर आपके चरण कमलों की किंचित मात्र भी कृपा हो जाती है वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे चाहे वेदों का वर्षों तक अध्ययन क्यों न करें आपको समझ नहीं पाते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वही समझ सकता है जिस पर उनकी कृपा हो, अन्य लोग उन्हें नहीं समझ सकते। ओम अज्ञानं तमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् सस्यरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नमः। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति दिशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब कथा प्रसंग से खूब परिचित होंगे, तो फिर भी श्लोक संख्या 18 से हम सूचना देते हैं। श्लोक संख्या 18 में बताया गया है, अयोध्या वासिन सर्वे बालकान पुत्रन रागतान दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन राजा चापि नतत्प्यतः। हे राजा परीक्षित, जब सारे अयोध्या वासियों ने देखा कि उनके लड़के पुनः जीवित हो उठे हैं तो वे चकित रह गए और राजा सगर को भी अपने पुत्र की अनुपस्थिति पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात महाराज सागर ने अपने पुत्र अंशुमान को घोड़ा ढूंढ लाने का आदेश दिया। अंशुमान, आपने चाचाओं के पथ से होकर धीरे धीरे राख के ढेर तक पहुंचा और उसने उसी के निकट घोड़े को पाया। श्लोक संख्या 20। महान अंशुमान ने विष्णु अवतार कपिल नामक मुनि को देखा जो घोड़े के निकट आसीन थे। अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दत्तचित्त होकर प्रार्थना की। प्रार्थना की श्लोक आज आपने आवृत्ति किए। तो प्रसंग इस प्रकार है, श्री अयोध्या नरेश सगर महाराज के दो पत्नी थे। आप सब पढ़े होंगे इस प्रसंग को। तो एक पत्नी का तो बेटे थे असमंजस और एक पत्नी का बहुसंख्यक पुत्र 60,000 लड़के थे और एक का एक थे, बताओ। अब वो जो एक थे असमंजस, वो नाम भी ऐसा ही था, वो महाराज सागर का भी नाम है, 20 के साथ पैदा हुआ था सागर। तो वो क्या करते थे असमंजस, वो तो पहले जन्म में बहुत बड़े जोगी थे, सिद्ध जोगी थे, तो जाति स्मरत है, उनको याद था सारे जोगी सब मंत्र तंत्र याद था। तो उन्हें खेलते कूदते बच्चों को पकड़ करके सरजू नदी में फेंक देते थे। अरे खेलने गए कोई बच्चा को पानी में फेंक दिए, मर गया डूब गया, दो चार बच्चों को डेली मारते थे। अब जब कंप्लेन आता था परेशान हो गए, बोले क्या राजकुमार है, अब क्या कहें, उठा के पानी में फेंक दिया, बच्चे गए। तो अयोध्यावासी जनता बहुत दुखी हो गई, बोले मार रहा डेली। कई लड़के को राजा के बस, राजा भी परेशान हो गए, बोले मैं क्या करूं बेटे के लिए। अंत तो गुस्से होकर उन देश से निकाल दिया, गुस्सा होकर के अयोध्या से निर्वासित कर दिया। जो निर्वासित कर रहा था तो असमंजस ने, वो एक्चुअली उनका ये चाल था। तो उन्होंने आपने योग शक्ति बल से जितने लड़के को पानी में डुबा के मार दिया था सबको जीवित कर दिया, वापस ले आया सबको, सबको लाकर अपने अपने घर में भेजा, बोले जाओ अपने पापी मम्मी पापा के पास। वो सब आश्चर्य विस्मितान अयोध्यावासी, बोले रे तभी से मरा था फिर आ गया। ऐसे अद्भुत कर्मा अद्भुत कर्म को देखे तो राजा सगर ने भी बड़े दुखी हुआ, बोला अरे यार इतने अच्छा लड़का मेरा, मैं उनको निर्वासित कर दिया, वो तो चले गए थे, वो आनंद नहीं चाहे, उनको बुलाए, बोले ना आप मैं नहीं रहूंगा, वो तो जोगी थे अपना योग साधना के लिए चले गए। तो उन्हीं का एक बेटा था असमंजस का, जिनका नाम है अनुसुमान, एक लड़का उनका, वो जोगी राज असमंजस का जो पहले जन्म से जोगी थे, योग सिद्ध पुरुष, उनके पुत्र थे अनुसुमान। और जो सगर महाराज का प्रथम पत्नी का जो पुत्र थे 60,000 होते, तो उन्होंने यज्ञ किए, सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ, और यज्ञ में इंद्र को तो होता ही है परेशान, वो बोला पता नहीं मेरा पुष्प पुष्प के ऊपर आँच ना आ जाए, तो आ करके चोरी किया, घोड़ा चोरी करके ले गया था, ले गया था तो अब घोड़ा ही नहीं कैसे पूर्ण होती होगा। तो उसने भेजे अपने, बोले ये को क्या इतने सारे संख्या में पुत्र हैं, सभी को आदेश दिए, बोले पुत्रों पूरा 60,000 को बोले आप जाओ घोड़े ढूंढो। वो सागर पुत्र घोड़े ढूंढते ढूंढते खोद डाले धरती को, बोलते उन्हीं के नाम से सागर तो पड़ा, सागर वो खोद डाले गड्ढा उसके लिए हो गया। ढूंढ ढांड करके अंततः एक जगह में जहाँ पर भगवान कपिल बैठ कर तप कर रहे थे, वहाँ घोड़ा को पाया। एक्चुअली कपिल भगवान तो बस अगर इंद्र ने बदमाश डर के मारे घोड़ा में छोड़कर चला गया था। तो घोड़ा को यहाँ देखे कपिल भगवान तो आंग मूंद कर बैठे थे, तो उनको बाबा जी एक आंग मूंद कर बैठा हुआ है, वो घोड़ा इधर है। ना देख करके उन्हें डाउट किए, बोले चोरी माल जहाँ बरामद होता है तो उसी को डाउट करेंगे, आजकल भी यही नियम है, बिल्कुल निर्दोष है, आपके घर में सामान निकला आपके ही अरेस्ट होंगे, है ना। नहीं तो कपिल भगवान को सारे राजकुमारों ने बोले देखो ढोंगी बाबा है आंख मूंद करके कर रहे, गाली देने कर, मारो पिटो करके उनको इसे गाली देने लगे, हवाला करने लगे, अपना हथियार उठाने लगे मारने के लिए उनको पकड़ करके, बोले ढोंगी है। तो भगवान अपने साधना में थे तो उन्होंने देखे हल्ला हुल्ला क्यों हो रहा है, तो आंख खोले तो भगवान कपिल देव का दृष्टि उल्मित हुआ, और वो 60,000 अपने आप में भस्म हो गए। कोई सोचता है कपिल देव जला देने, कपिल देव को बड़ी नहीं था, उनको जलाना क्या जरूरत था, उनको उनके मन में कोई क्रोध कोई द्वेष कुछ नहीं था, वो तो केवल देखे कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन वो आपने ईर्षा आपने द्वेष के कारण जो हिट प्रकट हुआ वो हिट से मर गए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस श्लोक में लिखते हैं ये महत व्यतिक्रमा, महत लोगों का महत पुरुषों का अपमान किया जाता अपमान किया जाता है ऐसे ही जल मर जाते हैं। तो जल के मरो या कैसे भी मरो मरते हैं, इसी प्रकार की दशा होता है। तो इस महत व्यतिक्रम का तुरंत परिणाम हुआ, सारे को सारे एकाध दो बच जाते, कोई नहीं बचे, अब घोड़े भी नहीं आया बच्चे भी नहीं आए। सगर महाराज बड़े चिंतित रहे, तो अंततः उनके पुत्र उनके दूसरा बेटा का बेटा जो बेटा तो चला गया था उनका बेटा अनुसुमान जो बचपन से बड़े उत्तम गुण के पुत्र थे, अपने नाना जी के काम सब करते दादाजी के सहायता करते थे, तो उनको बोले आप जाओ ढूंढो, घोड़ा ढूंढ के लाओ। तो चाचा लोग भी कहाँ गए, खबर शायद मिल गया होगा उनको भी। तो उन्होंने अपने चाचाओं का रास्ता पकड़ करके गए अंशुमान ने, उनको ज़्यादा इधर नहीं तो रास्ता पता सूचना मिल चुका होगा। और जा करके पहुँचे, 60,000 का जहाँ जले होंगे, बहुत स्टॉक होगा स्तूप का, राख बहुत बड़ा था, देखे समझ गए सारे अंकल लोग कहीं हैं। तो उस राख के ढेर के पास देखा कि बाबा जी बैठे हुए, घोड़ा भी है जिस घोड़ा को ढूंढना था। तो देखिए इन दोनों में अंतर, ये 60,000 राजकुमार थे, वो राजकुमार के कुमार है, लेकिन केवल व्यवहार में अंतर। उन लोगों ने घोड़ा को देखते ही गाली देना शुरू किए, अपने बिल्कुल उद्यत होकर के मारो पीटो, ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे साधु के साथ बिना जाने पहचाने। लेकिन उन्होंने देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके ये श्लोक कहते हैं, घोड़ा को देखा, मन में कुछ नहीं हुआ, घोड़ा को लेने से पहले, घोड़ा लेकर आ जाता कुछ नहीं, घोड़ा को लेने से पहले सबसे पहले साधु को प्रणाम करते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से उनको सूचना मिल गया होगा, ये साधु के पंगे में आकर ये मर गए मेरे चाचे लोग सारे, मैं और दूसरा पंगा नहीं लूंगा। चाहे उनको सूचना प्राप्त हुआ ना हो, लेकिन उनका ऐसे सुगुण था, स्वभाव था, तो उन्होंने साधु को देख करके, महत्पुरुष को देख करके उनके स्तुति करने लगे। इससे पता चलता है कि अनुष्मान जी को केवल साधु करके पता नहीं था, उनको क्या कर पता था, भगवान करके पता हो गया था। कर लिए होंगे जरूर, क्योंकि ये जो स्तुति उन्होंने शुरू किए उसमें बिल्कुल कहते हैं कि आप भगवान हैं, आपके बारे में हम भले कैसे जान सकते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण बात अनुष्मान जी कहते हैं, अनुष्मान वाच न पश्यति त्वं परमात्मनो जनो न बुध्यते अद्यपि समाधि युक्ति भी। हे परमात्मा, आपको तो देखना दूर बात है, जानना भी दुष्कर है, और हम तो क्या साक्षात सृष्टिकर्ता वेद गर्भ ब्रह्मा आज तक भी लगे हैं, जुटे हुए हैं, और कैसे समाधि युक्ति भी ही, आपने बुद्धि और युक्ति और समाधि में बैठ करके, योग साधना में समाधि युक्ति द्वारा आज तक भी भला जान पाए होंगे। बोले नहीं, अद्यपि न बुध्यते, नहीं जानते। फिर कुतो परे, फिर बाकियों का क्या कहा जाए, उनको छोड़कर बाकी जो उन्हीं से ही बने हुए हैं, ब्रह्मा जी के प्रोडक्ट हम सब हैं। बोलते हैं जो खुद ही ब्रह्मा जी को नहीं, अभी तक नहीं जान पाए, और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट हम लोग जीव जितने हैं सब गुण से अपने आप परेशान है, क्या आपको समझेंगे। विसर्ग सृष्टा, विसर्ग सृष्टा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट, वयम हम लोग कैसे जान पाएंगे, हमारे जानने के पास हमारे पास उपाय भी है क्या है। बोले मन शरीर धी, यही तो होता है ना, नहीं काय मन वाक्य, ये तीन ही तो माध्यम है। बोले ये तीन हमारे इतने कंटामिनेटेड है, उसके द्वारा कहाँ जाने, जो ब्रह्मा जी नहीं जान पाते हम क्या जाने, कैसे जान पाएंगे। तो इस उक्ति से हम लोग अनुष्मान के मनोभाव को स्पष्ट समझ पाएंगे कि उन्होंने का अंदर कितनी दैन्यता था, और भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा और सम्मान कितने था उनके मन में, और अपना नम्रता किस प्रकार था, ये उनका प्रथम वचन से स्पष्ट उक्त होता है। और भगवान की वास्तविक स्थिति के ज्ञाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, वो भगवान की वास्तविक स्थिति के ज्ञाता थे, तभी तो इस प्रकार श्लोक बोले, न पश्यति, आपको नहीं जान सकते, मतलब वो गीता कोर्स वगैरह किए होंगे जरूर। भगवान गीता में कहते हैं नम विदुहु सुरगणा प्रभवंती न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणांग सर्वसह। भगवान स्वयं कहते मुझे कोई नहीं जान सकता, नम विदुहु देवता लोग भी नहीं जान सकते, सुरगण प्रभवंती न महर्षय मेरे प्रभाव को महर्षि लोग भी नहीं जान सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी। देवताओं आपने सतो गुण के द्वारा, आपने साधन उपाय के द्वारा, ऋषि महर्षि लोग आपने योग साधना अपनी तप आदि द्वारा नहीं जान सकते मुझे। क्यों नहीं जान सकते? भगवान बोलते हैं कि मैं उनके बाप हूं, मुझे किसे जानेंगे, हम आदि रही, मैं उनका आदि हूं देवताओं के और ऋषि का च सर्वशः, अल्सो जितने अभी तक हुए हैं वो होंगे सबका, सबका बाप में हो, बाप के बारे में बेटा कैसे जाने। बोले इसलिए नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। अगर भगवान ने स्वयं जनाने चाहे भी, अगर पिताजी ने बेटा को अपने बारे में आत्मकथा सुनाएगा तो सुना सकता है डिटेल पूरा बचपन से सारे, लेकिन वो ऐसे पिता हैं वो स्वयं नहीं बता सकते। अर्जुन ने पूछा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, बोले मैं बताना तो चाहता हूं लेकिन मैं भी बता नहीं सकता मेरे बारे में। बोले मेरे लिए भी संभव नहीं है ना, मैं मेरा बारे में पूर्णता से बता नहीं सकता हूं। भगवान की उक्ति है भगवद गीता में दसवां चैप्टर में, जो बोल तुम्हें मैं नहीं बता सकता, ये संभव नहीं है। तो इसलिए आप जानना चाहते हो मैं थोड़े बहुत बता सकता हूँ, जितना संभव इतना, नहीं तो मैं भी नहीं पूरा बता सकता हूँ। अनंत है मेरा विभूति, अनंत है मेरा शक्ति, मैं ही नहीं बता सकता हूँ। तो बताने लगे अर्जुन तो क्या बताने लगे 30-40 श्लोक बताने के बाद फिर भगवान बोले तंग हो गए, बोले अर्जुन मैं कितना देर बोलते जाऊंगा, तू कितना भी सुनते जाएगा, इतना ही समझ लो। अथवा बहुनाते न किंग ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशे न स्थितो जगत। अब इतने समझ लो ये संपूर्ण चराचर जगत एक टुकड़े पर टिका हुआ है मेरा, मुझे क्या जानेगा तूने, मेरा एकमात्र अंश में संपूर्ण जगत टिका हुआ है, इतने ही समझ लो, बहुत है आपके लिए, तो मुझे क्या समझेगा। और अरे ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपके आपके द्वारा पढ़े लिखे गए हैं, आप ही उनको क्वालिफाई किए हैं, और वो भी आपको जानने के लिए प्रयास किए तो भी नहीं जान पाए। यहां तक तो अनुसुमान जी पता नहीं, उनको पूरे ज्ञान था, बोलते हैं कि न बुद्ध्यते समाधि युक्ति, बोलते ब्रह्मा जी भी आज तक नहीं जान पाए, आज तक ब्रह्मा जी प्रयास में है और नहीं जान पाए। तो प्रभुपाद जी ने उसके कमेंट्री के शुरुआत से गीता से श्लोक ले लिए, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मन, बोले हम जितने हैं सांसारिक प्राणी, हमारा जो उत्पत्ति हुआ है उसका मूल कारण क्या है, इच्छा और द्वेष, इसी में समुत्थे न द्वंद्व मोहन भारत, ऐसे मोहित हो करके हम लोग फंसे हैं, तो हम क्या बेचारा जान सकते हैं, हमारा दशा तो बड़ा दुर्दशा है। शुरुआत में हमारे दशा के बारे में थोड़ा इशारा कर दिया, ये हम लोग का स्थिति है। और भगवान की स्थिति के बारे में एक बात प्रभुपाद जी ने बता दे, बोले ये भगवान को तो नहीं जाना सकता, भगवान को अगर कोई किसी प्रकार में भी जाना जाने का कोई उपाय है तो प्रसाद लेसान गृहित वही, केवल भगवान की कृपा, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम्, अगर भगवान के श्री चरण की कृपा हो जाए, वही स्वयं आकर बता दें समझा दें तब कोई समझ पावे, नहीं तो कोई उपाय नहीं। श्री चैतन्य लीला में हम देखते हैं एक ऐसे धुरंधर विद्वत पुरुष थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, जगन्नाथपुरी के हेड प्रीस्ट थे वो, उनको महाराज प्रताप रुद्र ने अपॉइंटमेंट किए थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया इंडिया बेसिस में कंपटीशन हुआ था, अंतरजातीय कंपटीशन में उन्होंने टॉप आए थे, तब तो सिलेक्ट हुए थे। इतने भारी विद्वान थे, इवन प्रकाश नंद आदि आदि सब बड़े बड़े सभी जानते, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम साउथ टू ईस्ट वेस्ट सारे भारत वर्ष सभी जानते सार्वभौम कितने विद्वान है, क्योंकि सबको प्रास्त करके उन्होंने क्वालिफाई किए थे, सभी उनको जानते। और महाप्रभु ने पूरी गए टारगेट किए सार्वभौम को, सबसे पहले निशाना उनके बनाए, तो उनको टारगेट किए और उन्हीं को चेंज करने का तरीका, महाप्रभु इतने दीन नम्र हो गए, अपने आप को इतने छोटा माने के स्टूडेंट बन गए, उनके स्टूडेंट बन गए। एक तो उनको देखा है कि रूप ऐसा था कि बूढ़ा फंस गया, सर्वभौम देखा बोले इतना अच्छा लड़का है, मेरा ऐसा स्टूडेंट होता। अब पता चल लगाया उनका आईडी, जब पता किया है अपने गांव वाले निकला, अपने गांव वाले है, इतने सुंदर मिश्र ब्राह्मण है और वो भी संन्यास लेते, तो मन में स्वाभाविक स्नेह ममता हेल्प करने का विचार आया। और महाप्रभु तो महा आकर सके बोल फंसा देते बुढ़ा को, तो वो आया उनके पास बुला कर ले करके बोला, देखो आप संन्यास ले लिए लेकिन मेरा डाउट है, इतने यंग स्टेज में इसी उम्र में ले लिया ठीक नहीं है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि सार्वभौम जी आपको पता है पुरी में किस लिए आया? बोले ना, तीर्थ करने के लिए नहीं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं, कुछ नहीं, मेरे केवल एक ही प्रोजेक्ट था। बोले क्या? केवल आपके ही पास आया था मैंने। बोले सार्वभौम जी मेरे पुरी आने का एकमात्र उद्देश्य आपके शरण में आना था। रियली? मुझे पता लग गया था, मुझे पता लग गया था, अगर मुझे इसी विरक्त धर्म में निष्ठा लाना है तो आपके ही द्वारा ही हो सकता, तो मैं पता लगा लगा करके आपके पास आया हूं। और भगवत कृपा से, मैं तो आपको फोटो भी नहीं देखा था, जानता नहीं था, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप ही मिल गए पहले दिन। ये बात को सुनकर सार्वभौम तो बोला, कितने अच्छा है रे, कितने ओहो। उसका तो अंतर पिघलने लगा, ऐसे उनको बड़ाई किए, मैं तो केवल आपके शरण में हूं, आप कृपा करके मेरा, मुझे आपके छोटे शिष्य पुत्र और आपके निर्भर आपके मान करके जो कुछ डांटिए पिटिए सिखाए जो कुछ, मैं आपके शरण में हूं। ऐसे पांच सात वाक्य बोल दिए उनका तो कच्चे बार सारों, उनको तुरंत खूब ले करके साथ में दर्शन करा कर माला वाला पहना कर अपना घर में ले लिया, बुला करके आपने घर में बुला करके बोला कि अब ऐसा करो मैं आपको सिखाऊं ना, सिखा मुझे पूछते क्या है, आप जो चाहे सो करो, मैं तो आपके शरण में हूं, कैसे मुझे बचाना मुझे संभालना अभी आप काम सार्वभौम जी मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपके शरण में शरणागत हूं। ओहो, ऐसे वाणी सुनकर तो सार्वभौम कृतकृत्य हो गया। अब उनको बुला करके एडमिशन फीस जमा करना, कोई फॉर्म फिलअप करना, एडमिशन को टाइम देखना, कुछ नहीं, स्वयं टीचर खुद स्टूडेंट को बुला लिया अपने घर में, टीचर का घर में बुला करके ले करके, कोई क्लासरूम फासरूम कुछ नहीं, सीधा घर में आंगन में एक बरामदा में खुद साफ करके झाड़ू, खुद झाड़ू लगाया, आसन डाला स्टूडेंट के लिए, आसन टीचर डाला, डालकर बैठा करके उनके सामने बैठ गया, चश्मा वश्मा लगा करके पुथली गोल बैठे, बता दो आप बैठे पढ़ा, तो टीचर तो थे ही सार्वभौम वाजे प्रोफेशनल टीचर, वेदांत पढ़ा रहे थे, दांत था उनका तो पढ़ा रहे थे। तो आप सिंगल स्टूडेंट, उनका कई स्टूडेंट एक साथ पढ़ाते, आज एक ही छात्र को पढ़ाने लगे, और जब पढ़ाना शुरू किए एक श्लोक पढ़ पढ़ करके ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, क्योंकि महाप्रभु के रूप तो अत्यंत आकर्षक था ही, रूप के ऊपर में जब स्टूडेंट का रोल भगवान ने किए, ऐसा स्टूडेंट बने तो अवधि, जब भगवान स्वयं छात्र बने तो फिर कैसे छात्र होगा, एग्जाम्पल ऐसे विनित ऐसे ओबीडियंट स्टूडेंट ऐसे विनित भाव से बैठे थे, ऐसे एकाग्र चित्ता, कोई झपकी नहीं ले रहे थे, कोई जमाई लेना इधर उधर उधर, हम 15 मिनट में 15 बार एक्शन चेंज करते हैं पोजीशन, कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे एकाग्र चित्ते स्टूडेंट सा बैठ रहे थे। उनके पोज को, उनके भाव को, उनके बैठने का मुद्रा, उन्हें विनित भाव को देख करके सार्वभौम गदगद होते थे। बोले आपने मन में सोच रहे थे मेरे टीचर पना को धन्य है, मैं इतने दिन तक गुरुगिरी किया, पढ़ाया, टीचरशिप किया, ऐसा स्टूडेंट, ओहो अभी सफल हुआ मेरा टीचरशिप करना, ऐसे स्टूडेंट किसी को मिल जाए, अपने आप को सराहना करने लगे थे। और उनका जिस प्रकार एकाग्र चित्त से श्रवण का भंगी को देख रहे थे, सोच रहे तो पी ही रहा है, सुन नहीं रहा है, सब एक एक प्रांजल रूप से अक्षर तक सब ग्रास कर जा रहा है, इतने अपने आप स्वयं खुश हो रहे थे, सो नाइस। और इसीलिए बार बार देखते थे उनको, इतने उत्तम कोटि के छात्र। अब पढ़ाने लगे उन मन ऐसे लग गया टीचर का, ये बिल्कुल आज का स्टूडेंट है, कि जान पहचान पुराना भी नहीं है, इतने मन लगाया कि एक हफ्ता तक आपने ड्यूटी छुट्टी ले लिए, अपने सेवा से 1 वीक लीव लिए, जगन्नाथ जी के मंदिर कहीं से जाए, सुबह शाम तो वहीं बैठे, सेवा से अवकाश लेकर के अब उनको पढ़ाने लगे। कोई पहले योजना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब इतने सीरियसली पढ़ाने लगे। वीकेंड तक पढ़ाने के बाद में अब स्टूडेंट का मन में तो कोई प्रश्न आया नहीं, वो पूछा नहीं, टीचर ने पूछने लगा। टीचर ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछते समय उनका मन में ये भाव आया होगा, इतने सुंदर स्टूडेंट है, पूछता नहीं तो सब समझ रहा होगा, समझ जाता ही लगता है, और मैं थोड़ा मेरे कंफर्म कर लूं, पूछ करके सब समझ में आ रहा है तो कोई और भी, तो इसी माने में तो सार्वभौम जी खुद पूछे, बोले श्री कृष्ण चैतन्य जी, उनका नाम तो ही जानता था उन्हें, कृष्ण चैतन्य जी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो खुश होकर के, मैंने आशा करता था कि बोलेंगे आपका वाणी इतने अमृत में इसे बढ़िया सब समझ रहा हूँ, यही उत्तर आशा करते हुए पूछे कि जरूर ऐसा कहेगा, इतना अच्छा सुन, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, सब समझ में आ रहा ना ठीक ठाक, बोल करके आशा तो कर, इसलिए बिल्कुल डांट कर बैठे, जरूर कहेगा आप, कितने अच्छे। लेकिन ये प्रश्न पूछने के बाद में और छात्र शिरोमणि का उत्तर जब सुने, ओहो हो छात्र शिरोमणि बड़े विनित भाव से बोले, गुरु जी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बोले व्हाट, तू कैसा स्टूडेंट है यार, मेरे कैरियर में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा मैंने, पूरा हफ्ते दम तक मैं परेशान हो गया पढ़ाता, मैं छोड़ के नहीं जाता, दूसरा काम छोड़ करके छुट्टी लेकर पढ़ाया, तू ऐसे बैठ कर झपकी भी नहीं लाता, जमा भी नहीं लाता, इतने सीरियसली अब सुन भी रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, जो समझ में नहीं रहा है पूछता क्यों नहीं है। बोला क्या तेरे भाव, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोले शुरू से पहला दिन से, मैंने पहला दिन सेकंड डे थर्ड डे कुछ नहीं समझ में आया। ओहो हो सारों का मन इतने खट्टा हो गया। बोले क्या मान गए, कैसा है यार। बोले तो समझ में नहीं आता पूछता क्यों नहीं है, ना क्या पूछूं, जो आप मूल श्लोक पढ़ रहे हैं वो तो सब समझ में आ रहा है, ये सब ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो परपट दे रहे हैं ना, वो परपट समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या टेक्स्ट समझ आ जाए, परपट नहीं आ रहे ये क्या। तो और कंफ्यूज क्या बड़ा को, ऐसे कंफ्यूज में डाल दिए, कंफ्यूजन में डाल करके थोड़ा सा फिर आर्गुमेंट शुरू किए, किसी समझ नहीं आया तो पूछता क्यों नहीं, क्या पूछूं, जब मूल में ये बात लिखा है आप परपट ऐसे क्यों दे रहे हैं। धीरे धीरे पहले तो बता रहे थे मैं पढ़ा लिखे नहीं हूं, ऐसे हूं ऐसे हूं, इतने हम्बुल करके डाले, और धीरे धीरे प्रकाशित करने लगे, स्लोली स्लोली स्लोली, एक एक दुख का व्याकरण, बोला तो संस्कृत जानता है क्या, ना थोड़ा वो सीखा हूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट था। स्कूल में ही था। तो धीरे धीरे करके करते 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 आगे तक ऐसे युक्ति पर स्टेज आ गया वेदांत के प्रभु, अब दांत निकलने लगा उड़ा के। जितने बितंडा युक्ति उठाने लगा, ये हो उठते ही तुरंत थप, वो युक्ति निकालते ही भगवान है। एक ऐसे रोड मारते बुढ़ा का, वहीं से दांत खट्टा हो जाता था। वो बोलती नहीं था, ऐसे निरस्त किए कि मुंह से वचन निकलना बंद हो गया, खन्नी मार गया, क्या बोलेगा, और कोई बोला नहीं जा सकता। आपने आपको अति आश्चर्य होकर बोला, लड़का कौन है ये, तो मुझे निरुत्तर कर दिया आज। अच्छा हुआ कि दूसरे कोई स्टूडेंट है नहीं आज। इतने आपने आपको अपमानित, इतने ऑकवर्ड फीलिंग करने लगा, बोला मैं क्या हो गया मेरा, मैं वही सार्वभौम भट्टाचार्य हूं, ये एक छोटा सा लड़का है, अभी अभी वीकेंड मैंने खुद उसको लाया बैठा पड़ा, ये तो मेरा हाल खराब कर दिया यार। बहुत आपने आपको फील कर रहा था, तो महाप्रभु तो अंतर्जाम ही है। बोले सार्वभौम जी ऐसा मत सोचिए, गलती सबका होता है, थोड़ा बहुत सब हो लगता है, इसमें क्या, ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं, डोंट वरी। समझाने लगे उनको, थोड़ा उनके बात सुनकर आया, बोला सबका भी होता है ना, होता है, आपका कौन सा बड़ी बात, ऐसे होना कोई विचित्र बात नहीं है, इस बात में कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी चिल्ला भी गुरु को मात मार देता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलते बोलते भागवत आत्माराम श्लोक बोल दिए, बोले ये तो भगवान के गुण है, ऐसा है, बड़े बड़े आत्माराम पुरुष दिग्गज जो जो बिल्कुल त्यागी महापुरुष है, आत्मारामस मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, जिनका गांठ बिल्कुल खोल चुका है, ऐसे ही उरुक्रम महापुरुष लोग भी फंस जाते हैं, आकर भक्ति करने लगते हैं। बोले क्यों, बोले हरि के गुण ही ऐसा है, हरि के गुण ही ऐसा है, उनको फंसा डालता है, तो इसलिए आप इसे चक्कर में आ गया। क्या वो समझ में आ रहा था, हरि तो सामने ही फंसाता है उसको। वही फंसा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बोला आप ये भागवत श्लोक जानते हैं, बोले हाँ सुना था कहीं से। बोले अर्थ बता, बोले मैं छोटा सा स्टूडेंट, मैं क्या आपके सामने अर्थ बताऊं, आप ही बताइए। तो सार्वभौम ने श्लोक अर्थ करने लगे, उन्हीं से अर्थ कराए, वो तो पूरे कसर लगा करके नव अर्थ किया, नव प्रकार अर्थ किया, और उनसे बोले उससे भी और भी अर्थ नहीं है, और नहीं हो सकता, रिपीटेशन होगा और क्या होगा, जिस प्रकार से जो अर्थ निकलना में सब कर दिया। तो बोले नहीं आप चाहते हैं तो मैं, मतलब बोलो देखी तू क्या बोलेगा, वो सोचा था मुझे बोला उसी को रिपीट करे, वो क्या बोलेगा। लेकिन महाप्रभु ने उन्हीं से आज्ञा लेकर के उन्हीं के सामने फिर अर्थ करना शुरू किए, उनका नौ प्रकार का अर्थ को टच किए बिना 17 अर्थ और निकाल दिए, एक के बाद दूसरा अर्थ करते चलते सार्वभौम का यहीं से अंक उठ रहा था, इस आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। 17th में आया और संभला नहीं, क्या दुम दड़ाम कर गिर पड़ा एक बार, मूर्छित होकर के, हु आर यू, हो तो हो ही नहीं सकता, पहले तो स्टूडेंट का मानना था, स्टूडेंट तो मनुष्य भी नहीं हो सकता, वो कौन हो आप तो बताओ। ये तो गड़बड़ी है, तू आईडी कुछ छिपा रहा तो बताओ प्लीज। मूर्छित हुए, कंपमान हुए, बिल्कुल अति विस्मित आश्चर्य होकर देखने लगा। महाप्रभु बोले बुढ़ा को हाइड्रोज हो गया, अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, इतने बहुत है। इतने में भगवान ने अपने रूप दर्शन करा दिए उसको। तो जब भगवान के इसी प्रकार उनके ऊपर कृपा नहीं हुआ था, इसी नहीं मन में सोच रहा था कि भगवान को पढ़ाऊंगा, ट्यूशन करा के उनको ठीक ठाक कर दूंगा, यदि वो एतराज ना करे तो उनको अपग्रेड कर दूंगा। गोपीनाथ से पूछा था, बोला सन्यास किस में ले, भारत, भारत किस लिए, मेरा तो पहचान है, फोन करूंगा अपग्रेड करा दूंगा, गिरिपुरी में कर दूंगा। गोपीनाथ बोला आप वो साला भी नहीं लगे, बोला तू पागल है क्या, ये ईश्वर है, उनको कौन सा सन्यास पढ़ी है, ये सबसे क्या मतलब है। सार्वभौम ने देखने लगा, आप बोलते ईश्वर है, वो सार्वभौम का स्टूडेंट लोग भी आए थे, वो खड़े वो डिबेट करने लगे, बोले गोपीनाथ जी आप बोल दिए ईश्वर, वाड़ी थी प्रभु, ऐसे जिस किसी को ईश्वर बोल देंगे आपने? बोले नहीं, जिस किसी को नहीं बोलता हूँ, ईश्वर को ईश्वर बोलता हूँ। बोले कैसे ईश्वर, क्या प्रमाण है? बोले ईश्वर का प्रमाण क्या होता है? बोले ईश्वर का प्रमाण अनुमान होता है। बोले गधे कहीं के, अनुमान से ईश्वर को प्रमाण करेंगे? अनुमान से ईश्वर क्या प्रमाण कैसे कर सकते हैं? बोला अच्छा, अनुमान से ईश्वर प्रमाण हो तो गुरु जी यही से कहा, गुरु जी खड़े थे इधर। बोले कैसे ईश्वर को जान सकते हैं? बोले ईश्वर को जानने के लिए श्लोक बोले, अथापि ते देव पदाम्बुज, ईश्वर की कृपा से ईश्वर को जाना जा सकता है। बोला अच्छा, ईश्वर की कृपा से ईश्वर को जाना जा सकता, नहीं तो कोई। बोले आप ईश्वर को जान लिए, आपके ऊपर कृपा है, हमारे ऊपर कृपा नहीं। मैं हेड़ पुजारी हूँ, जगन्नाथ जी के मैन पृष्ठ हूँ, मेरे ऊपर कृपा नहीं है। तू घर से आया, बोले तेरे ऊपर कृपा, तू समझ गया है? क्या प्रूव है तेरे ऊपर कृपा है? गोपीनाथ हंसने लगे, बोले अरे साला, उनके साला ही लगेंगे, गाली नहीं दे रहे थे। बोले मैं ईश्वर को समझ ले, यही तो प्रमाण है, कृपा है। उनके कृपा के बिना समझा कैसे? वस्तु के स्वरूप वस्तु ज्ञान से होता है। बोला मैं सुबह से ला कर, बोले यही तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा किसने खोटे बुद्धि है। सुबह 6 बजे से लाकर 3 बजे तक घर में रखा हूं, घर में रखा था तूने, उसके सारे लक्षण देखा, देखा ना था ना आपने, अति आश्चर्य हो करके उन्हें सात्विक विकार चिन्ह को सब देखा था ना, ना देखा था ना, तो फिर भी समझ में नहीं आया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है करके। आज के जो क्रिया मुद्रा जो देखा तो नहीं समझ में आया कि साधारण मनुष्य नहीं है। बोले अरे खबरदार, मेरे से युक्ति कर रहा है, शास्त्रार्थ मेरे से कर रहा है। गोपनाथ, मैं जानता हूं तेरे से कोई शास्त्रार्थ कर नहीं सकता, तो दिग्विजयी पंडित हो, मैं भी तेरे शास्त्रार्थ नहीं करूँ, लेकिन क्या शास्त्रार्थ करूँ? शास्त्र में जो बात लिखा है मैं जानता हूँ, यही बात कह रहा हूँ। क्या बात लिखा है? ना शास्त्र में ही बात लिखा है कि शास्त्र ज्ञान के द्वारा ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। और उसको और खट्टा हो गया, स्टूडेंट के सामने उसको बोलता है, और तू कैसे जानेगा? शास्त्र में तो यही बात लिखा है ना। क्या शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में ईश्वर नहीं है, वो त्रिजुगी है। बोला तभी तो मैं बता रहा हूं, भागवत और भारत, महाभारत और भागवत दो मुख्य शास्त्र है, इन दोनों में प्रांजल रूप में इस बात में लिखा है। तो उसमें पढ़ करके कितनी बार नहीं पढ़ा, उसको नहीं जानता है? भागवत में लिखा है इस बात, महाभारत में भी लिखा है इस बात, कलयुग के इसी ईश्वर के बारे में लिखा गया है, फोरकास्ट किया गया है, तो पढ़ करके नहीं समझ पा रहा। आप युक्ति का बोला है, तू क्या मेरे से युक्ति करेगा? चलो ना, मैं तेरे से युक्ति भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कभी वही चाहता हूँ कि कब आपके ऊपर इनके कृपा हो जाए। वही खुद अगर आपके ऊपर कृपा करें तब आपको ऐसे ही समझ जाएंगे, बाकी क्या समझेंगे तुमने। गोपनाथ बोल के गए था, आज एक हफ्ता में हो गया, एक हफ्ता के अंदर सार्वभौम को ऐसे अद्भुत परिवर्तन कर डाले, तो ये प्रकट प्रमाण है कि सार्वभौम जैसे प्रकांड विद्वान भी ईश्वर को उठा करके लिया, अपने घर में रखा, पूरा दिन सुबह से शाम तक रखा, उनको खिलाया पिलाया और उनको सौहार्द्य किया, उनके आशीर्वाद लिया, और एक हफ्ता तक अपने घर में बैठा करके सामने, बिल्कुल सामने देख करके श्रद्धा से उनके पढ़ाया, तब भी नहीं जान। और शास्त्र ज्ञान तो था ही, वो कितने ज्ञानी था, प्लस डेली पढ़ाता था स्टूडेंट को, तब भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जब कृपा हुआ तो ऐसे परिवर्तन हुआ, ऐसे परिवर्तन हुआ कि पूरे स्टेट में लोग आश्चर्य हो गए कि सार्वभौम पंडित का ये परिवर्तन, उनका हेडलाइट चेंज हो गया। हेडलाइट ऐसा था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो गया, जो देखे बोले हो क्या गया गोसाई, आपका सोने चांदी का माला पहन रहे थे, वो उतार करके लकड़ी के माला पहने, ये परिवर्तन कर डाले एक हफ्ता में, ये है ईश्वर की कृपा। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए कोई साधन, कोई ज्ञान, कोई तप, कोई उपाय नहीं है। रूप गोस्वामी का एक भजन है, ये शब्द से याद आता है मेरा, शायद इसमें होगा, कृष्ण देव भवंतम बंदे, कृष्ण देव भवंतम बंदे, कृष्ण देव भवंतम बंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद, मम मानस मधुकर मर्पय निज पद, पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युत, इदमिच्छामि निशाम्य तवाच्युत, तदपि कृपाद्भुत वीचिम्, तदपि कृपाद्भुत वीचिम्, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, देव भवन्तं वन्दे। भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमात्री, न त्वयि मम तिलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे देव है, मेरे देवी आप ही बनिए, देव भवन्तं वन्दे। मन मानस मधुकर मेरे मन रूपी भ्रमर, मम मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, हे कृष्ण मेरे मन रूपी भ्रमर को कृपा करके अलाव कीजिए, आपके श्री चरण कमल के चरण कमल से जो सुधा निर्गत हो रहा है उसको पीने के लिए बैठ करके, बैठ कर पीने के लिए इसको अलाव कर लीजिए, प्लीज आप अर्पण करो। भगवान बोले, अरे तू सीधा सीधा आकर के मेरे चरण सरज में सुधा को पूरा वहीं बैठकर पीना चाहता, दूसरा कुछ नहीं? ना नहीं, मैं इसको पीना चाहता। बोले पता है इसको पाने के लिए? कहा हाँ पता है। बोले क्या? तो बताते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, विधि ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा जी का नाम है विधि। बोले यद्यपि, यदि मैं जानता हूं समाधिषु, यहां भी समाधि शब्द आया, यद्यपि ब्रह्मा जी आपने बड़ी आयु से, आपने बड़ी सामर्थ्य से, चार मुख हिरण्यगर्भ वेदगर्भ है ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, आपने जोग समाधि द्वारा न पश्यति, देख नहीं पाते। क्या नहीं देख पाते? आपको देख नहीं पाते, आपको नहीं देखे टोटाली, आपके चरण को देखे? बोले नहीं, चरण को भी नहीं देख पाए। चरण को नहीं पाए तलवा चरण तो लोग बोले नहीं, उसको भी नहीं देख पाए। बोले नाख, नाख को तो देख लेंगे कम से कम। बोले नाख को भी नहीं, नाख को क्या, तो नखाग्र मरीचि, नाख से जो चमक निकल रहा है वो उसको भी नहीं देख पाया। यद्यपि समाधिषु विधिर अपि अपश्यति न तब नखाग्र मरीचिम, आपके नाख के अग्रभाग से जो लाइट निकल रहा है, जो चमक निकल रहा है, उसको भी देख नहीं पाए ब्रह्मा जी अब तक, अपने समाधि योग से समाधि सुने देख पाए। इदमि छामि निशम्य तवाच्युत, लेकिन मैं इच्छा करता हूं। बोले किस आस पर भाई? ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, तू उन्हीं की परंपरा के हो। ब्रह्मा जी अपने समाधि योग से नहीं देख पाए अभी तक, चरण क्या नखाग्र परिचित देख नहीं पाए, तो इदमि छामि तुम इच्छा करते हो ना, हम इच्छा करता हूं, मैं तो पीऊंगा रस सीधा, देखूंगा क्या? बोले हाँ, कैसे, क्यों? मैं इसलिए इच्छा करता हूं, किस बल पर इच्छा करता है? सुन के बल पर, मैं सुना हूं, आई नो, तुम क्या जानते? इदम इच्छामि निसम्य तवाचित, निसम्य मतलब भली प्रकार से श्रवण किया हूं, अच्छी प्रकार से सुना हूं मैंने, क्या सुना? न तदपि कृपाद्वित विचिंग, आपके अद्भुत कृपा के तरंग को मैंने बारंबार सुना हूं, आपके कृपा का जो अद्भुत शक्ति है उसको मैंने बारंबार सुना हूं, इसलिए सुन करके मेरे मन में ठान चुका हूं, मैं तो पीऊंगा, देखूंगा क्या? निसम्य तवाच्युत तदपि कृपा अद्भुत बीचिम, बोले ठीक है पीऊंगा, लेकिन भाई भक्ति के बिना भक्ति? बोले भक्ति 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 तो मेरे से कुछ नहीं है ठाकुर जी। भक्ति रुदंचति चद्यपि माधव, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, हे कमलापति, आपके प्रति मेरे हृदय में तिल मात्र भी भला भक्ति होता, भक्ति रुदंचति चद्यपि माधव, यदि भी मेरा हृदय से आप प्रति रंच भर भी भक्ति नहीं है, तिल मात्र भी भक्ति नहीं है, न तो ही मम तिल मात्री, आपके प्रति मेरा तिल मात्र भी भक्ति भावना नहीं है, बोले तब भी ना, तब भी फिर कैसे, इतने भी भक्ति नहीं फिर इतने बड़े साहस? बोले साहस है, बोले किस लिए? न परमेश्वरता तदपितवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, बोले मैं तो नालायक हूं, भक्ति भक्ति कुछ भी नहीं है, ये मुझे पता है, मेरे बारे में मुझे पता है, लेकिन ये भी पता है ना, क्या ना, आपके परमेश्वरता, आपके महानता, आपके शक्तिमत्ता, भगवत्ता, आपके परम ईश्वरता मुझे ऐसे पता है, क्या पता है ना, दुर्घटक विघटन कर सकता है, अति महा आश्चर्य कभी नहीं होने वाला जो चीज इसको ऐसे ही बना सकता है, अति आश्चर्य को भी कर सकता है, दुर्घट घटन विधात्री, ये आपके परमेश्वरता है, तो मैं इस नालायक को सलायक करना आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, इस जो सुनकर विश्वास किया हूं इसी के बल पर पीना चाहता, तो इसलिए होपलेस नहीं होना चाहिए हम लोग को, रूप गोस्वामी ने हमको सबको आशा दिए हैं इस भजन से, कोई निराशा नहीं होना चाहिए, पूर्ण आशा रखना चाहिए, यद्यपि हमारा स्थिति बहुत नाजुक है, कोई भक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल भगवत कृपा के ऊपर पूर्ण भरोसा करो, भगवत शक्ति ऊपर, उनके परमेश्वरता पर विश्वास करो, उनके परमेश्वरता ही ऐसा है अति अघटन को घटन कर सकता है, दुर्घटन घटन कर सकता है, तो आपको भी उनके चरण सरोज में आपके मन भ्रमर को सुधा पिला सकता है, ऐसा ये आशा रखते हैं, तो ये आशा आता है निसम्य केवल ठीक से श्रवण करने से, श्रवण करने से अभी ये अड़िग विश्वास, ये अड़िग दृढ़ता, ये ठान आ जाता है, नो प्रॉब्लम, इतने का हमारे क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे, मेरे से वो कुछ है ही नहीं, मैं उनके सहारा में हूं तो किसे नहीं करेंगे, ऐसे दृढ़ता आ जाएगा, रूप गोस्वामी का कहना। तो आज अंशुमान ने भगवान कपिल देव को प्रार्थना करते हुए शुरुआत से ये सूचना दे दिए कि मैं इस स्थिति हूं, आपको तो कृपा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको भगवान करके मान लिया, जान लिया, अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके स्वभाव के अनुरूप आप मुझे कृपा करेंगे, मैं तो घोड़ा लेकर ही जाऊंगा, और उन जो अपराधी जिनको दशा हो उनका भी उद्धार होगा, ये आपकी बोल दीजिए मुझे, हाँ उनको बोलना पड़ा, उनका उनका मुक्ति के उपाय भी वो बोल दिए, बोले गंगा स्पर्श से होगा, अब टाइम लगेगा गंगा जी आने में, लेकिन बोल तो दिए ना, उपाय बता दिए, तो जो काम कितने बल बुत्ते पर, कितने शक्ति सामर्थ्य पर नहीं हो सकता है, वो केवल नम्रता और प्रार्थना से ऐसे असंभव संभव हो सकता है, किसी के कृपा को आपके ऊपर लेने के लिए यही प्रोसेस है बस। ऐसे बात करो बेचारे फंस जाएंगे, करना पड़ेगा। अब भगवान तो फंसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई ऐसे कैंडिडेट आए तो उनके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की जय। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ
राजा, सागर के साइड एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चारों दिशा में जाना चाहिए था, और एक सागर के पुत्रों में अगर किसी में भी इतना मतलब शिष्टाचार नहीं है तो सागर अपने ऐसे पुत्रों को अश्वमेघ यज्ञ की खोज के लिए क्यों भेज रहे हैं? मतलब इन दो
प्रभु जी आपके 60,000 के लिए डिस्टेंस के दिल्ली में कितने लोग होंगे? दिल्ली में पॉपुलेशन कितना होगा? 1.5 करोड़ है ना। किसी का एक का भी अभी सुविचार है? और 60,000 क्या कहते, बहुत कम है। 60,000 का प्रॉपर बिहेवियर नहीं हुआ, ये एक 1.5 करोड़ का बिहेवियर नहीं है, सब पॉल्यूटेड कर देते हैं, है ना? नहीं तो उसमें आश्चर्य क्या है? जो आपने अहंकार में ग्रसित होगा, ध्यात्म बुद्धि से रहेगा, उनका ही दशा होगा, है ना? और एक ही लाइन पकड़ेंगे सब। आप बोलते चारों दिशा में नहीं गए, वो चारों दिशा में जाकर भी यही दिशा में आए, जहां पे घोड़ा था वो जो जो एक देख लिया सबको बुलाएगा ना, अरे इधर ही है, अब इधर उधर क्यों जाए, है ना? नहीं आया समझ में? आपका
महाराज, जैसे जो प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया उसमें है कि भगवान की कृपा से हम भगवान को जान पाते हैं। हाँ। जैसे हम लोग सुनते हैं कि भगवान कृपा हमें मिलती है भक्तों के माध्यम से, तो यहाँ पे कुछ अलग से दिया हुआ है।
क्या अलग से दिया गया?
भगवान की कृपा से भगवान जान सकते हैं।
हाँ, भगवत कृपा से भगवान जान सकते हैं। भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगा? भक्त कृपा अनुगामिनी, है ना? यहाँ ये कहा गया कि भगवत कृपा से भगवान को जानेंगे, भगवत के कृपा को कैसे प्राप्त करोगे, उसका भी तो कुछ उपाय है ना। ओके। हरे कृष्ण।